मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे मां शरणागति। सर्वप्रथम अपने में परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पास श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के सब स्थान महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पास श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणति श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। पिदंडी पादगण सज्जन सज्जनी वैष्णव और वैष्णवी भक्ति के स्तर से भक्तों का स्तर बतलाता हुआ मैं बतला रहा था प्रहलाद महाराज जी की भक्ति से अम्बरीश महाराज की भक्ति का तात्पर्य अधिक श्रेष्ठ है और उनसे भी अम्बरीश जैसे भी हनुमान जी की है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, कोई दूसरी संतति इत्यादि नहीं रहे, न स्त्री है न धन रखते हैं न संपत्ति है, सारी एनर्जी सारा ध्यान सारी ममता राम के चरणों में उनकी है। राम के लिए वो जीते मरते हैं, राम को भूख लगने पर वनवास के समय किष्किंधा के बाद में भूख लगने पर फल संग्रह करके फल फूल मेवा कंद उनके चरणों में देते हैं और खिलाते हैं, प्यास लगने पर पानी खोज करके ला करके देते हैं, कभी कभी उनके बाहन होकर के कंधों पर बिठा करके जहां तहां ले जाते हैं। राम और रावण के युद्ध में अधिकांश ये लक्ष्मण या श्री रामचंद्र जी के बाहन बनते थे। रामचंद्र जी सीता का पता लगाने के लिए उनके प्रभु की स्त्री भी चोरी हो जाती है और पता लगाने के लिए समुद्र लांघ करके गए और लंका को जला कर भस्म कर दिया और सीता जी से कहा हमारे कंधे पर बैठिए हम आपको ले चलते हैं। सीता जी ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं, रामचंद्र खुद आए इसके वंश का ध्वंस करके तब हमको ले जाए, इसी में सब प्रकार से कल्याण है। इसके बाद में कभी रामचंद्र जी के सेनापति होते थे, अपने लंगूर से चारों तरफ से परकोटा बना करके और वही गेट पर स्वयं बैठे रहते, रामचंद्र जी को धूप से बचाने के लिए अपने पूछ से ही छत्र छाया कर देते, तरह तरह से रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों को शक्ति सेल में, लक्ष्मण जी के शक्ति सेल में रातों रात में गोवर्धन वहां से हिमालय से संजीवनी पर्वत को ही उठा ले आए। वो वहां के वैद्य थे, सुसेन वैद्य को घर समेत उठाकर ले चले आए। इस प्रकार से सब समय सेवा करते थे, यहाँ तक कि एक समय राम लक्ष्मण भर शत्रुघ्न और सीता जी ने लक्ष्मण जी ने चारों ने मिल करके ये विचार किया, ये हनुमान सारी सेवा ग्रहण कर लेता है रामचंद्र जी का, हमें कोई सेवा में लगने नहीं देता, इसलिए हम लोग सेवा को बांट ले, रात की सेवा सीता जी करेंगे और जो जितने काम है हम तीनों भाई संभाल लेंगे, इसको वहाँ पर घुसने नहीं देंगे। ठीक है, दूसरे दिन से कार्यक्रम के अनुसार में हनुमान जी को कोई सेवा नहीं दी गई। तो हनुमान जी रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोले इन लोगों से, ये भैया हम तो बिना उसकी सेवा के रह नहीं सकते, तो तुम लेके एक सेवा हमें दे दो जिसमें तुम लोगों का भी हर्ज नहीं होगा और मेरी भी सेवा चलती रहेगी। क्या? यदि राम को जम भाई आए तो मैं चुटकी बजाया करूं। उन लोगों ने सोचा भगवान राम को तो कभी बाकी नहीं है जम भाई, ठीक है जाओ तुम ये सेवा कर। अब ये घर के बाहर बैठ करके चुटकी बजाने लगे, कबरम जम भाई उनको आ जाए कोई ठीक नहीं, इसलिए पहले से ही चुटकी बजाने लगे और राम को जम भाई आने लग गई। अब सारी सेवा बंद हो गई, रामचंद्र जी का खाना पीना सोना सब कुछ भूल गया और वो चुटकी बजाते रहे। लोगों ने मना किया किंतु माने ही नहीं, अज भाई उनको पबा जाए कोई ठीक नहीं,
तो बाहर बैठा
हूँ। अंत में सब लोग जाकर के रामचंद्र जी से कहा जी कोई उपाय कीजिए, ये तो हम लोगों को कोई सेवा ही नहीं करने देता, तो तुम लोग इसको कोई सेवा दे दो नहीं तो ये ऐसा ही करेगा। अंत में हनुमान जी को भी सेवा दी गई, तब कहीं जाकर के मामला सुलझा। कभी कभी सीता जी एक बार चली गई बाथरूम में श्रृंगार भवन में, और श्रृंगार स्नान करने के बाद में 16 श्रृंगार करके सिंदूर लगाया यहाँ। उसी समय सीता जी को खोजते हुए हनुमान जी, कहाँ सीता जी गई, स्वामिनी जी मेरी किधर गई, खोजती खोजती श्रृंगार भवन में पहुंचे। मैया ये क्या कर रही हो? तो ये सिंदूर लगा रही हो किस लिए? तुम्हारे प्रभु जी जीवित रहेंगे और सुखी रहेंगे इसलिए सौभाग्य का चिन्ह हम लोग लगाती हैं। ठीक है, लगा करके वो चली आई रामचंद्र जी के पास में बैठ गई और हनुमान श्रृंगार भवन में पहुंच करके सारा सिंदूर सारे शरीर में लगा दिया। सभा में पहुंचा, सभी लोग हंसने लगे, राम हंसे ये तुमने क्या किया? तो मैया सीता जी यहाँ लगाती हैं आप जीवित और सुखी रहने के लिए, तो मैं अंगों में लेपन इसका करता हूँ कि आप सुखी रहे। इस तरह से बहुत उनकी सेवाएं हैं। किंतु हनुमान जी में ये बात है, अपना कोई झूठा चीज राम को नहीं दे सकते, उनकी सैया पर बैठ नहीं सकते, जहाँ सीता जी रहेंगे वहां पर नहीं जाएंगे, इनके लिए संभव पर नहीं है। इच्छा करने पर भी आलिंगन नहीं कर सकते। रामचंद्र जी इनके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देंगे बस। किंतु इनसे श्रेष्ठ लोग पांडवों की सेवा, कैसे सेवा श्रेष्ठ है माधव महाराज जी संक्षेप में बतलाएंगे। यू शुड एक्सप्लेन।
So for the last few days we've been hearing of the devotees and their gradations of service. We heard yesterday how Ambarish Maharaj is superior to Prahlad because he engaged in service, while Prahlad as a Gauri Bhakta did not engage in service to his Ishtadev. The superior to Ambarish Maharaj, who is a sadha, is Hanuman. Why? Because Hanuman is Bhava Brahmachari, lifetime, celibate, since boyhood. He has no wealth, no family, no wife, no children. He has no place to stay. All his energy and all his mamata, his feelings of possessiveness, are directed only towards Sri Ram. If Ram is hungry, then Hanuman moves in the forest and collects fruits and roots. If Ram is thirsty, he brings water for Sri Ram. And even he carries Ram as a carrier. When he knew that his Prabhu's wife had been stolen by Ravan, then he jumped across the ocean to Lanka and burned it to ashes. And he said to Sita, you come on my shoulder, I will carry you back to Ram. And Sita said, my son, that is not possible. Ram will have to come here. I cannot touch any other man. So Ram will have to come here and rescue me. Therefore, what services Hanuman performs? Sometimes he becomes the general of Ram's army. When Ram and Lakshman were wounded by the weapons of Meghna, then Hanuman made his tail into a fort and himself stood in the guard at the doorway as a guard. He used his tail to protect Ram from the sun. And when Ram and Lakshman were injured, it was he who went to the Himalaya to bring back the Sanjeevani Osani. And he carried the whole mountain to save Ram and Lakshman. Therefore, one time, Bharat, Satrughna, Sita, everyone met together and said, Hanuman is taking all the sand to Ram. We have no chance. Then they made a plan. How they would take all the seva and put Hanuman outside. Therefore Hanuman had no service. Therefore Hanuman requested, give me one service. Then Hanuman thought, I'll take the service which no one does. What is that? In India, when someone yawns, then some they go, Jai Shri Ram. Otherwise some goes to some inauspicious thing, they go in someone's mouth. Therefore Hanuman said, when Ram yawns, then I'll click my fingers. Jai Shri Ram. But one thing is, Bhagavan never yawns. Therefore, and Hanuman was outside. Therefore, when Ram will yawn, he doesn't know. Therefore, he was always Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. And Ram began yawning. Hanuman was doing continuously. Therefore, Ram could not eat, could not drink, could not sleep, could not do anything. Because Hanuman was always clicking his fingers outside. Then finally, everyone tried to stop Hanuman, but Hanuman would not stop. This is my only seva. And I am not inside, I cannot see when Ram is yawning. So finally, Ramji suggested, you have to give Hanuman some seva, otherwise he will never stop. Therefore, this is the service attitude of Hanuman. One time, Sita Devi, she went inside her Srinavaran, where the ladies decorate themselves. Therefore, she was putting, Hanuman was searching, where is my Swamini, my mistress? Then he looked and saw Sita Devi was putting some red sindu, some red mark here on her forehead. Then he asked her mother, what is this mark doing? So this gives your Guru a long life. It's like when the husband is alive and the lady puts this red sindu on the part of the head to keep her husband alive. But by this, Ram will have a good fortune and he will live a long time. And Hanuman thought this is a very good idea. So when Sita Devi went back, then Hanuman took the whole pot and mixed with oil and covered on his whole body from head to toe. Then Red Hanuman, he came into the meeting assembly and everyone began laughing. Even Ramchandra asked, Prabhu, what astonishing form you have here. Why have you done this? And he said, if Sita Devi, just by putting a little bit here, can give a long life and good fortune to Ram, imagine what will happen if I cover my whole body from top head to toe.
So we have
So you see everywhere, all the temples of Hanuman, now even Hanuman is that red color. So Hanuman has such feelings towards his Lord. But there is something, we should say, lacking in Hanuman, some problem. What is that? He cannot feed his remnants to Ram. He cannot sit on the same seat as Ram. We always see Hanuman sitting at the feet of Ram and massaging, because monkey's hand is very soft. Also, when Sita is with Ram alone, that time Hanuman cannot go there, even though he has desire. Therefore, he cannot embrace Ram. Therefore, superior to Hanuman are the Pandavas. Ram can give blessings to Hanuman, but more than that, he does not do. Therefore, superior to Hanuman is the Pandavas. And we'll hear from my Bhagavan, the glories of the Pandavas.
And brave.
ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसे तो गुरुदेव ऑर्डर डिस्कस अबाउट पांडवर्स Just your heart comes to the Gurudev. All the Hanumans have been Lord Ram so many ways. But he could not give his remnant, could not sit on the bed of Lord Ram, could not eat some sand plate. So Pandavas, they are Prema Tur Bhakta. So they are more advanced than Prem Bhakta Hanumanji. So if you give some example, then you can get one clear conception. Our Pandavas, Arjun and Draupadi are prominent. When Mahabharata battle took place, then Krishna became charioteer of Arjun. And Hanumanji, Krishna ordered Hanuman to be on the top of Arjun's flag. Whenever the calamity comes, then you have to roar so loudly, then the opposite party can fly away from here. So whenever the danger comes, then always Hanuman protect Arjun. So in the one hand is serving Lord Ram, and here he is serving the devotee of Krishna. And Arjun told to Krishna, Senayo Upayanodhi Ratham Sthapayami Archita. Arjun told, oh Krishna, this time my chariot is between two soldiers. I want to see the armies. Who is fighting from which side? And prior to that, Krishna and Baladev was one very darling sister, Subhadra. And Baladev Prabhu taught club fighting both Duryodhana and Bhim. So Baladev Prabhu won that Subhadra will marry with Duryodhana. But Duryodhana was dead against all Pandavas. So Krishna told to Arjun that he has to kidnap Subhadra. And how to do that? Krishna made all confidence and told to Arjun. When Subhadra Devi, according to Vedic tradition, before marriage, the bride will come and be pronounced to Devi and pray to Devi. So when as Subhadra entered the demigod's temple, Arjun was ready in form of a sannyasi. How he came, everything came before to that, in this case of sannyasi, brother who went to there, the pranam, all queens, the deed were pranam to him and take blessings, nobody knows. Even brother who is not different from Krishna, he is also Bhagavan. By the influence of Japan, he could not understand anything. As soon as Subhadra went to the demigod's temple, then Arjun kidnapped her and Rupa was there. Because Subhadra went to my chariot. And not only that, Arjun told to Draupadi, Subhadra, to hold the reins of the horse and drive the chariot. The god was in Subhadra, they informed Baladev and Krishna, that sannyasi is not sannyasi, but this guy is of Arjun, he kidnapped to Subhadra, this is just humble for our dynasty, what to do? Then it is Baladev to very angry. And told Krishna, let us go. That sannyasi was not sannyasi, was not sannyasi. He kidnapped our sister. But Krishna calm and quiet, nothing telling. I am going ahead. And I ordered all soldiers. Then Krishna told, my dear brother, why you tell that Krishna, Arjun kidnapped Subhadra? I think that Subhadra kidnapped Arjun. Look, who's driving the chariot? Really, Subhadra is driving the chariot? Okay, if you kill Arjun now, we are bound here so much power, who can do that? So, you love Subhadra so much. When Subhadra kidnapped Arjun, that means you give a heart to Arjun. That means marriage took place. If you kill Arjun now, your sister will do. You lie, then your sister will do for whole life. Then, Bharata took to Arjun. Krishna, if you desire, why not tell us before? Since Krishna's desire, all the group can come and quiet. And once Arjun and Krishna were sleeping in the same bed in Indraprastha, Narada Rishi is always playing on a veena and traveling from one planet to another planet and playing on veena, Simon Narayana, 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 Simon Narayana, Narayana, Narayana. He landed in Indraprastha. And he went direct to Arjun's bedroom. He found that Arjun and Krishna both are sleeping in the same bed. Not only that, Krishna's lotus feet going towards Arjun's chest and other side, Subhadra and Draupadi fanning Krishna's lotus feet. Other side, Krishna's feet going towards Krishna's chest and Rukmini and Sukdhamma fanning his feet. for the city, for the rope, for the core of this Arjuna's body. Krishna, Krishna, Krishna is coming out. How much intimacy then? And for what would not do that? And although Krishna is doing all these things, not only serving Arjuna, even he is serving his house also. But as soon as Arjuna saw the universal form of Krishna, then he told, Sakhyati matta pasadhamya duktam. Oh Sakha, I tell you, my dear friend, do this, do that, please excuse me. Sisyastyam sahimam tam prapannam. I am your disciple, please punish me. As soon as he saw that universal form, the opulent moon, then his intimacy turned away, far away from him. And when Mahamad Bhatta was going on, then so many soldiers already killed. Now battle in last moment, in last point. Duryodhana entered in a big pond. And the predominant deity of that pond told Duryodhana, don't come out. I'll make your whole body more than thunderbolt. Then even beating someone, you will not die. In the bench of the pond, Bhim and Arjuna are always there and abusing him so much. When they are abusing, then what happened? Duryodhana could not tolerate. He came out and told, okay, now we can fight each other. And Duryodhana told that, this is what I told, yes, yes, this is Bhim Arjuna, you can choose anyone. He said, oh, my elder brother, what are you telling? Can you fight with him with club? Can Arjuna fight with him club? Duryodhana said, okay, fight with your best king between king. Now Krishna told, now, Bhaiya, what will you do now? Then she told, what is this you can tell? Bhima is our king. Then you see what I told? Bhima is our king. Okay, then fight, we have to fight with him. Then Duryodhana told, okay, if he is your king, then you have to do pranam to him, because subject have to pranam to king, and Yudhishthira Maharaj is so great, if he do pranam to junior to him, they are hand in the crack and finish immediately. Duryodhana is very happy, okay. As soon as you do pranam, then his chest will open up and finish. Then I am going up. Then Krishna told to him, means that I am going behind of Yudhishthira. For me, you can do pranam, not to Yudhishthira. He did so, and he did. This one take his pranam, by this way, this one saved them. So many, when they are in forest for exile, one day, Durvasa came to Duryodhana. Duryodhana feed him very nicely and pleased him. And told, Varan Grihi, Varan Grihi. He told, oh, Munibar, I am so worried, I am so sorry. My brothers, they are living in the forest, so many calamities they are facing. So, if you want, please on me, please go to my brothers and be their guest. But one condition, go after 3 p.m. Okay. But Durvasa's character is always glorified before this, but indirectly. Just like glorify Ambarish Maharaj, you have heard yesterday from Samaranjiti. So Durvasa went there, along with the 60,000 disciples, and going there telling, oh Maharaj, this is it. At that time, they are in God's Vimalakunda, huge sarovar, pond. I am with my 60,000 devotees, you have to feed me today. You saw it became very happy, okay, no problem. Then, okay, I am going to take bath, I am coming very soon. You just know what I told, oh, how you can do that? Even he could not feed him, then he will curse us and turn in grasses. Then, this is the brothers, Bhim and Arjuna told, let us go to Draupadi. Because Draupadi had one pot donated by Sun God. Unless until he will not eat and not clean the pot and keep upside down, then he can feed the whole universe. They have known this thing. So he told them to go after 3 p.m. So then Draupadi and Yudhishthira Maharaj all are discussing. Draupadi told him, I am sorry, I cannot do anything today. So I have already taken my prasad and he cleaned the pot and keep upside down. Then what to do now? Then Yudhishthira Maharaj told, oh Draupadi, better you can remember Krishna. If you remember Krishna, Krishna is bound to come immediate. But if you call it take too much time, as soon as Draupadi called out for Krishna, Krishna without delay appeared there and told, oh Draupadi, I am very hungry. Feed me something. I am very hungry. Draupadi, oh Prabhu, for whom I am calling, and you are making another problem, please listen to me. You are no one of the kind. Please bring me something first, then I will listen. Then, Dhrupadi said, oh Prabhu, I have eaten already, and I have given my pot. Okay, bring your pot. Dhrupadi brought her pot, and Krishna found one piece of spinach. Krishna took in his mouth and drink water. Satisfied, I'm satisfied. Tasmin to stay to jagat kustam prinite prinitam jagat. If Krishna is satisfied, whole world is satisfied. If Krishna is no hunger,
Radio Krishna.
Then, okay, Dr. Bhim, go and call Dhrupadi. Bhim took his glove and Krishna told, put his glove with you. Don't go empty handed. Took his glove, his mustache. Oh, receiver! Oh, receiver! Please come! Please come! We are waiting for the prasad. When Krishna took the spinach and drink water and got satisfied, the stomach of the whole rishis is completely full. When they saw him is coming with glove, and oh my God, if we don't go, then he will crack our head. From there, they ran away from water and from sky. By this age, Pandavas helped by Krishna and Krishna helped them and they helped Krishna. So they are more greater than Hanuman. So they are living same way, eating from same bed. So after that, we listen from Srila Prabhupada Goswami. Hare Krishna. One time, Prabhupada Goswami, Shri Prabhupada Goswami, Shri Prabhupada Goswami, Shri Prabhupada Goswami, Shri
Prabhupada पांडवों की सेवा हनुमान जी से भी अधिक है। कृष्ण उनके नौकर बन जाते हैं, हनुमान जी को भी नौकर उनका बना देते हैं। किंतु एक बात है, यदि कृष्ण ने उनको विश्व रूप दिखलाया महाभारत के युद्ध में, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ये प्रभु आज से आपको सखा नहीं कहूंगा, अपना साथी नहीं बनाऊंगा, आप तो विश्व ब्रह्मांड के रचयिताओं के भी रचयिता हैं। हमने आपको जो सखा कहा है, आपके चरणों में जो अपराध मैंने किया है, आप क्षमा कीजिए। इसलिए उनको गौरव बुद्धि आ जाती है और भक्ति दूर हो जाती है। इसलिए इनसे भी श्रेष्ठ जादव लोग हैं और उन जादवों में भी श्रेष्ठ उद्धव जी हैं। उद्धव जी कृष्ण के छोटे भैया हैं, उनके मंत्री हैं, उनके सेनापति हैं, उनके सुहृद हैं, बंधु हैं, सब कुछ उनके हैं। कृष्ण की छाया की तरह में वो रहते हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं। जब कृष्ण को ब्रज में जाने की बात हुई तो देखा ये और तो कोई योग्य नहीं है जिसको मैं उद्धव को मैं और अपना प्रतिनिधि बना करके वृंदावन में भेजूं। मेरे मैया पिता माता हमारे दिल में मर रहे हैं, उनसे भी अधिक गोपियां हमारे दिल में छटपटा रही हैं। मैं ही उनका एकमात्र जीवन हूँ, तो उनको सांत्वना देना जरूरी है। किंतु किसको भेजूं? सब प्रकार से विचार किया, उद्धव भी ऐसा हो सकता है। इसलिए उद्धव को बुला करके उनसे कहा, कुछ और भी इसके बीच में रहस्य की बात थी। वो रहस्य की बात ये, कृष्ण ने देखा हमारे विरह में गोपियां छटपटा रही हैं, माता जी भी छटपटा रहे हैं, किंतु एक दूसरे को वो सांत्वना भी देती हैं। राधिका जी विरह में जब छटपटाती हैं, तो ललिता विशाखा उनकी उनको सांत्वना देती है। यशोदा मैया को पास पड़ोस की महिलाएं भी सांत्वना देती हैं, किंतु कृष्ण गोपियों के विरह में मैया और सखाओं सबके विरह में जब छटपटाते हैं तो किसी से भी अपने दुख को बांट नहीं पाते। इसलिए सोचा आज उद्धव को मैं ब्रज में भेजूं और जहां पर हमने प्रेम की का पाठ सीखा है उसी पाठशाला में उसी विद्यालय में इसको भेजूं और वहां पर जाकर के ये प्रेम क्या है, ढाई अक्षर प्रेम का परास्त पंडित हो, यह ढाई अक्षर ही प्रेम है, किंतु इसको जानने से कृष्ण को भी वशीभूत किया जा सकता है, ऐसा ही प्रेम है ढाई अक्षर का। तो उसको भेजूं वहां और वहां पर जाकर के ये प्रेम क्या है आएगा, प्रेम ढाई अक्षर प्रेम का, तब ब्रज का प्रेम के विरह में कैसे मैं छटपट हूँ, गोपियां कैसे छटपट करती हैं, यह जान सकेगा और तब मुझसे मैं अपने दुखों को कहने से वो हमको सांत्वना दे सकता है। असल बात ये थी, वो जानते थे कृष्ण उद्धव को ब्रज में उनको सांत्वना देने के लिए भेजूंगा, किंतु वो तनिक भी सांत्वना उनको नहीं होगी और उनका विरह का ज्वर अग्नि बढ़ती चली जाएगी। फिर भी भेजा। एक समय अपने छत के ऊपर में उत्तर दिशा की तरफ में वृंदावन को देखा कृष्ण, जब संदीपनी मुनि के पाठशाला से लौटे और देखते ही ब्रज की याद आई, गौओं की याद आई, सखाओं की, माता पिता और गोपियों की, रोने लगे। उद्धव जी खोजते खोजते वहां गए तो देखा जी कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा जी भैया तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा तुम ब्रज में जाओ, तुम योग्य हो, वहां जा करके हमारे माता पिता को सांत्वना देना, विशेष करके गोपियां हमारे विरह में अत्यंत प्रमत्त हैं, वे हमारा बिना जी नहीं सकती। बस मैंने कहा था आते समय में कि मैं परसों लौट आऊंगा, कल नहीं तो परसों जाऊ जरूर लौट आऊंगा, इसीलिए मैं जीवित हूँ, गोपियां जीवित हैं, नहीं तो कभी की मर जाती, और नहीं मरती हैं इसलिए मैं तो कभी मरता नहीं, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को हमारे अंदर में रख दिया है, इसलिए वो मरती नहीं है। उद्धव जी को कहा, उद्धव जी जाने लगे, अपने सोने का रथ उनको दे दिया, चढ़ा करके ब्रज में भेजा। ब्रज में गए, ब्रज में जाने पर शाम का समय था, देखा गायें बछड़ों के लिए रंभा रही है, घोष लोग अरे दही दूध भांड ले आओ, कोई कहता है बछड़े को छोड़ दो, इस तरह से देखा जे कृष्ण के समय में जैसे लीलाएं होती थी ठीक वैसे ही हो रही है, सांड गायों के लिए लड़ रहे हैं और गोपियां घर में दीपक जला करके गोविंद दामो दर माधवी थी ये गा रही हैं, मानो कृष्ण ब्रज में है। थोड़ी देर के बाद ही मैं देखा वो दृश्य समाप्त हो गया, कृष्ण के विरह में ब्रज सुना देखा, कहीं भी प्राणों का स्पंदन नहीं है। देखा इसके बाद में नंद बाबा के दरवाजे पर गए, नंद बाबा को खबर मिली, आए उनका अभिनंदन करके घर में ले गए, देखा जब उद्धव तो सवेरे से चला है, कुछ खाया नहीं, मैया जसोदा तो रसोई बनाती नहीं, किसके लिए बनाएगी, और कृष्ण के विरह में अंधी हो गई है, उनके जो पात्र थे रसोई के वो सब औंधे पड़े हुए हैं, चूल्हे पर मकड़ों ने जाल बना दिया, रसोई बनती नहीं घर। नंद बाबा ने एक ब्राह्मण को बुला करके कहा अपने घर से खीर बना करके लाओ, वो भी खीर बना करके लाया, चीनी थी नहीं उसके घर में, ऐसे ही उद्धव जी को भूख लग रही थी, खाए। वे जब शांत हो गए तो बाबा उनसे पूछना चाहते हैं कृष्ण कैसा है, हमारा बेटा कैसा, किंतु गला भरा आता है, आंखों में आंसू भर जाते हैं, पूछ नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से रोक करके उन्होंने कहा ओ बड़े सौभाग्य की बात है, हमारा भैया वसुदेव उसके पुत्र हुए जितने सबको मारा अंतिम उसने कल्स अपने पापों से मारा, कृष्ण ने नहीं मारा। अच्छी बात हुई। इसके बाद वे बोले किसी प्रकार से धैर्य धारण करके मेरा कृष्ण कैसा है, और कहते ही आंखों में आंसू भर गया, गला भर गया। कहते हैं कि मैं कृष्ण को भूलने के लिए यमुना के तट पर जाता और वहां वो स्नान करता था और सखाओं के साथ में खेलता था, मुझे और भी कृष्ण का स्मरण आता। गोवर्धन पर जाता हूँ, उसकी चरण की चिन्हों को देखता हूँ। ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसके नीचे रहकर वो खेलता नहीं था। फिर वहां से दूसरी जब जाता हूँ भूलने के लिए, ब्रज में कोई स्थान ही नहीं है जहां पर कृष्ण को भूल सकूं। जब खूब रोने लगे तो उद्धव जी सोचने लगे कि कृष्ण ने भेजा है संतान तो देनी चाहिए। बोले नंद बाबा, आपको कृष्ण में इतना प्रेम और ममता है, आप धन्य है और यशोदा जी धन्य है, महान भाग्यवान दोनों है। नंदा जी बाबा बोले, अरे क्या करें, मैंने सोचा ये कृष्ण के साथ में रहने से तुम्हारी कुछ बुद्धि आ गई है, किंतु तुम्हारे अतों के दांत भी नहीं टूटे। अरे तुम सोचो तो सही, जिसको मैं अपना केवल पुत्र ही मानता था और वो यदि भगवान हमारे घर में बेटा के रूप में आया और उसने देखा इसको ममता प्रेम नहीं है तो हमारे घर को छोड़ करके दूसरी जगह चला गया, हमारे जैसा दुर्भागा जगत में कौन जन्म लिया होगा। देखो जगत में एक ही पिता था, वह था महाराज दशरथ, अपने बेटे से प्रेम था। जब वो वन में चला गया तो हाराम हाराम, बस तीसरी बार हाराम नहीं निकला, प्राण निकल गए। मैं कृष्ण हमारे घर से चला गया, मथुरा में चला गया, मैं अभी तक जीवित हूं, यह हृदय पाषाण का बना हुआ है, क्यों जीवित है मैं नहीं समझता। इस प्रकार से कहकर के विलाप करने लगे और सारी रात बीत गई। सवेरा हुआ, उद्धव जी ने स्नान किया, पास ही एक तालाब है उस समय का, अब उसका नाम कृष्ण कुंड हो गया है। स्नान करके आचमन करके और आंधी करने लगे, मंत्र जपने लगे। इतने में देखा क्या, बहुत सुंदर कदम्ब के वृक्ष हजारों है, उसकी कायगा क्यारिया है, बड़ी सुशीतल छाया है। उसमें उन्होंने कुछ गोपियों को देखा, वो अपना कार्य समाप्त करके अन्निका उसकी तरफ में बढ़े, गोपियों की तरफ में। गोपियों ने उद्धव को देख करके कहा, ये कौन है जानती हो? दूसरी ने कहा, हाँ जानती हूँ, ये कृष्ण का दूत है। कैसे जानी? आंखें भूल कर सकती है किंतु नाक भूल नहीं कर सकता। कृष्ण का ये माला पहन करके आया है, उनका पीतांबर पहन करके आया है, उनके कपड़ों को उसे कृष्ण की गंध आ रही है, मैं कृष्ण के गंध को पहचानती हूँ। दूसरे ने कहा, अरे सखी आया क्यों? उसने कहा, नहीं जानती, ये यहाँ का पथ भूल गया है, जाना चाहिए था माता पिता के यहाँ, हम लोगों से तो इसका कोई संबंध नहीं, और था तो वो तो टूट गया, उसने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया, किंतु माता पिता का संबंध रक्त से संबंधित होता है, वो कदापि छूट नहीं सकता। एक ने कहा, अरे देखा सोने के रथ में चढ़ा करके आया है। दूसरे कहने, जानती हूं किस लिए आया है, कंस मारा गया है ना, तो उसके लिए पिंड देना है, तेरहवीं में पिंड देते हैं, पिंड देना है, तो यहाँ मथुरा में तो कोई पिंडम में नहीं मिला, यहाँ पर सब गोपियां मरी हुई होंगी, ये सुन करके उनका ही पिंड निकाल करके ले जाने के लिए आया है। धोजी ने कहा पाए मैं रथ में सोने के रथ में चढ़कर के आया क्यों क्यों आ? मुझे बड़ी भारी गलती हुई। फिर एक आती है उद्धव ये बतला सकते हो, एक स्वार्थमय प्रेम होता है एक निस्वार्थमय प्रेम होता है। पहले औपाधिक प्रेम के संबंध में समझो स्वार्थ वाला प्रेम। एक भिक्षु किसी के घर में जाता है राधे राधे और भिक्षा मिली चल चला, यदि गृह स्वामी का जे दो चार कीर्तन सुना दो भाई अभी समय नहीं है हमको बहुत काम जाना है चला जाएगा। एक विद्यार्थी गुरु के यहाँ पढ़ा पढ़ करके पूरा पंडित हुआ, जब स्कूल छोड़ दिया पाठशाला विद्यालय और गुरु को प्रणाम करने के लिए भी नहीं जाएगा। एक वेश्या पुरुष से खूब प्रेम करती है रुपये के लिए, जब देखती है कि वो निर्धन हो गया सारा रुपया मेरे पास आ गया तो दूसरे के पास चली जाती, उसको प्यार नहीं करती। एक वन जंगल में एक हरे पेड़ पर तोते इत्यादि सब पक्षी रहते हैं, पेड़ जल गया और उसमें या फल फूल नहीं रहा पत्ते भी दूर हो गए सूख गया आप नहीं बैठेंगे। जंगल में हिरण इत्यादि पशु रहते हैं, जंगल जल गया फिर कभी भी नहीं आएंगे। पुरुष स्त्रियों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से भी, पत्नी जल गई कुरूप हो गई जब दूसरी शादी कर लेगा, ये स्वार्थमय प्रेम है।
ट्रांसलेशन
हाँ देखो, और हमारे कृष्ण से तो कोई स्वार्थ में प्रेम नहीं था, वो भी हमको प्रेम करते थे निस्वार्थ रूप में, हमने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं, कपड़े लत्ते भोजन कुछ नहीं मांगा निस्वार्थ में। ये कैसे टूट गया उद्धव? उद्धव से खुज रहने लगे नहीं उत्तर दे सके, विद्यालय में भर्ती होने के लिए गए थे, ये परीक्षा हुई एडमिशन के लिए उनको अपने परमिशन मिला, केवल विद्यालय को देखा दूर से, उसके प्रोफेसरों को देखा ललिता विशाखा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये को देखा और प्रिंसिपल राधा जी को भी देखा, थोड़ी सी महिमा समझी किंतु ब्रज के कुछ भी नहीं हो सके, घास भी नहीं हो सके, अंत में लौटना पड़ा था। हाँ ट्रांसलेशन
हनुमान हनुमान इज पांडवस बिकॉज इवन कृष्ण बिकेम अ सर्वेंट ऑफ द पांडवस एंड हनुमान आल्सो हैड टू सर्व द पांडवस बाय कमिंग ऑन द फ्लैग ऑफ अर्जुना। दे हैव ऑल द पांडवस। Superior amongst all of them is Arjuna and Draupadi. But when Krishna showed his disrobe, his universal form to Krishna, then Arjuna began shaking. Oh, forgive me. You are the creator of even the creators of this world. And I call you friend, Yadu, etc. Arjuna became full of Gaurav Buddhi, respectful feelings, and his bhakti decreased. Therefore, superior to even the Pandavas are the Yadus. And of all the Yadus, Uddhava is the best. Because Uddhava is Krishna's cousin brother also. His minister, his friend. He follows Krishna like a shadow. And out of all the millions of Yadus, Krishna chose him only to go to Vrindavan as his representative. He said, Uddhava, oh, Krishna knows that his mother and father, Nanda and Yashoda, are almost dying in separation from him, and the gopis are restless like a fish out of water. Then how to pacify them? Who will I send? Krishna considered deeply and sent Uddhava. But there is a more secret point to this, rather than simply giving pacification to the Vrijavasis. There is one point to consider. The gopis are experiencing separation from Krishna, but there are many, many gopis. Therefore, when Srimati Radhika feels separation from Krishna, then she can be pacified by her friends like Lalita and Vishakha. Yashoda is experiencing separation from Krishna, but she can be pacified by the other senior ladies of Gokul. They can share their hearts with them and then their pain can become lessened. But to whom Krishna will speak in Mathura, there is no one who can understand the Bhava of the Vrajavasis. Therefore, Krishna, if he could go there and learn something, he would come back. Then we could discuss amongst ourselves. I would be pacified and happy. Therefore, Uddhava is a great scholar, but Dayaksha Pemko. All the scriptures just give two syllables, prema. Therefore,
two and a half syllables.
So, Krishna is thinking, if I send Uddhava there to Vrindavan, he can hear something, he can learn something, then he can come back and I can reveal my mind to him. Krishna knows actually that Uddhava cannot pacify the Vrindavasis. And in fact, Uddhava went there and their separation only increased millions of times. Therefore, one afternoon, Krishna was on the roof of his palace in Mathura looking towards Vrindavan. And seeing that time was the time when the cows had turned home from cow grazing, thinking that Krishna became immersed in remembrance of the Vrijavasis, the cows, Nandi and Sode, and especially the gopis. And Krishna began weeping. Uddhava saw Krishna weeping on the roof and caught his hand, "Oh brother, what's wrong with you?" Uddhava was astonished. The Supreme Lord can weep. Therefore, Krishna said, "Uddhava, you should go to Vrindavan. They are completely, their lives are about to leave them. You should go there and pacify them. Only because I gave a promise, I will return the day after tomorrow. Somehow or other, they are maintaining their life. Oh, no, the gopis have given their lives to me. In fact, I am their life. It is for this reason that they are still living." Therefore, Krishna gave Uddhava a golden chariot. And on that chariot, Uddhava went to Vrindavan. As he was going towards Vrindavan, then Yogamaya gave him some vision of them. He gave him vision of Vrindavan, the same as when Krishna was present there. He saw millions of calves. People were shouting, "Hey, bring that bucket. Hey, release that calf. Hey, don't do that." They saw bulls fighting for cows. Everyone was full of ecstasy and very happy. The sound of the flute was everywhere, and the gopis were churning yogurt, singing Govinda Dhamo Dharmadaveti, just as if Krishna was there. Then the next second, Yogamaya took away her curtain, and Uddhava saw everyone is drowning in separation. So when Uddhava came to Vrindavan, then Nanda Baba was there. He thought Uddhava must be hungry, having traveled all day. Therefore, he wanted to feed Uddhava, but there was nothing to feed him because that Mother Yashoda had become blind in Krishna's separation from weeping so much. Mother Yashoda had not cooked since the day Krishna left for Mathura, because for whom will she cook? All her pots were covered in spider webs and covered in dust. Therefore, Nanda Baba requested one Brahmin who was living nearby to cook some sweet rice for Uddhava. But that Brahmin had no sugar, because when Krishna left Vrindavan, all the sweetness went with him. Therefore, Uddhava somehow ate that rice boiled in milk. Then, Nanda Baba, with his voice choked, he asked, "How is Krishna? How is my brother Vasudeva is very fortunate, because all his sons were killed by Kamsa, and Kamsa was killed by his own sins, not by Krishna." Therefore, Uddhava, Nanda Baba, with his voice choked and tears pouring down his chest, he asked, "How is my Krishna?" Oh, Uddhava, sometimes to forget Krishna, to escape this pain of separation, I leave this house and I go to Yamuna. I go to Govardhan. But everywhere, under every tree, I see Krishna perform some leela here. I see his footprints everywhere. I go outside to forget Krishna, but I cannot forget Krishna. In fact, my remembrance of him simply increases. Therefore, Uddhava saw the prayer of Nanda Baba, he became astonished. He thought, I've been sent here to pacify them. Therefore, thinking deeply, Uddhava said to Sri Nanda Baba, who could speak, Yasoda could not speak. Oh, Nanda and Yasoda, you are the most fortunate. Hearing this, Nanda Baba laughed. Fortunate Uddhava? I thought that you had gone with Krishna, you may have achieved some intelligence. But I see that you are very foolish, even your milk teeth have no charm, means you are like a child. You are saying that I am fortunate. Yes, because you have developed such friend for the Supreme Lord, who has come as your son. Then Nanda Baba said, you are saying the Supreme Lord came as my son. But the Supreme Lord is only, he only takes prema, he is only interested in prema, but he saw that we have no prema. Therefore, he left us and went somewhere else. And you are calling us fortunate? Oh, look, we are the most wretched, the most unfortunate. Then Sri Nanda Baba said, if there was one father, that was Dasarath Maharaj. When Ram went to the forest, he could not maintain his life. He cried, Haram, Haram, and left this world. But I am still alive. Oh, look, my heart is like a stone. And saying this, weeping all night, the pastime discussions of Krishna Katha. In the morning, Uddhava went to bath in Krishna Kund, near Vandandagam. And there he chanted his mantra, his anek. And underneath one tree, he saw a gopi. Some gopis were discussing. And Uddhava was hearing. One gopi asked, who is he? Another gopi said, oh, you don't know, that is the messenger of Krishna. Because the eyes can cheat one, but the nose cannot cheat. Therefore, this fellow comes from Krishna because that garland he is wearing has the fragrance of Krishna upon him. And he is wearing Krishna's pitamba, his yellow cloth. Therefore, this is the messenger of Krishna. Just seeing now Krishna is saying, I am very big. Even my messenger rides on a golden chariot. Hearing this, Uddhava was ashamed. Why I came in a golden chariot? I should have came and come with bare feet. Therefore, one gopi, why has he come here? We don't know why he has bothered to send a messenger. Then the gopi said, it's true Krishna may have left us, our relation may have broken, but it's not that easy to forget one's mother and father. Therefore, Krishna has sent his messenger to pacify Sinanda and Siyasoda. And another gopi asked, then why has he come to see us? Then one gopi said, you know, Kamsa has died. And in Vrindavan, they could not find any pinda. When someone dies, then they offer some oblations, some foodstuffs for the departed soul. But in Mathura, there was nothing to give to the dead soul of Kamsa. Therefore, he has come here to collect the hearts of the gopis, because we are also about to die. In hearing this, Uddhava felt most wretched. So Uddhava came, and the gopis asked him, Uddhav, can you answer our question? There are two types of prema. One is swarth prem, swarth mind prem. That means love with selfishness. And the other type of prem is niswarth prem, nirmal prem. Pure prem where there is no selfishness. There are many examples of selfish prema. For example, a beggar. He comes to your house, Hare Krishna, Hare Krishna. But as soon as you give him a donation, he's out of bed. Even he may say, oh brother, let me hear Tuesday Kirtan. He said, I can't, I have many things to do, and he'll leave. He's fulfilled the reason for which he's come, then he's left. Or like a student. A student learns everything from the teacher. But when his studies are finished, even he may be like he will not even bow to the teacher before leaving, and he will never come back because he has fulfilled the desire for which he has come. Selfish love is seen in a prostitute. She gives so much love to the man. When his credit card is finished, then she kicks him. A bird has so much attachment to the tree as long as there is fruits there. But when the fruits are finished, then he leaves. The deer has so much love for the forest, but when the grass is finished, he moves to another forest. A man has so much affection for a woman, but if she's burned by a fire, then he'll kick her and get another one. He will marry again. Therefore, Uddhava, these are all examples of selfish love. Swadmoy prem. But Uddhava, our love for Krishna was not like that. Krishna never gave us any food. We never demanded food, clothes, jewelry, nothing from Krishna. Our love for Krishna had no selfish motives. And Krishna's love for us also was not selfish. Never would have, if our prema was pure. Can you tell how it broke? Uddhava scratched his head, but he could not answer. Therefore, Gurudev says, Uddhava was sent by Krishna to the school, the university of prema, pure affection. Then Uddhava, he saw the college from a distance. He met the principals and some of the teachers, like Radhika and Lalita and Vishaka. But when the gopis gave him admission tests, Uddhava could not even pass the admission, what to speak of entering into the school of prema.
गोपियां अनुभव को लेकर के कुछ आगे बढ़ी। श्रीमती राधिका जी कृष्ण के विरह में सो रही हैं। गोपियों ने कमल की पाखुड़ियों का सेज बनाया है। उनके अंगों के स्पर्श से वही दम सूख गया। चंदन लगाया, चंदन भी सूख गया है। जीवित है कि मर गई, रूई लेकर के नाक पर देकर के देख रहे हैं कि हिलती डुलती है कि नहीं। देखा जो श्वास किसी प्रकार से है, और उसी अवस्था में एक काला भ्रमर राधा जी के चरणों को कमल समझ करके उसका मकरंद लेने के लिए उस पर उड़ने लगा। उद्धव जी ठीक समय पर पहुंचे। उस समय राधा जी मन ही मन में देखा कृष्ण बिना गोपियों के या स्त्रियों के रह नहीं सकता। वैसे ही वो मथुरा में है, वहां की राजकुमारियों से प्रेम उससे हो गया और उसके साथ में विहार कर रहा है। एकदम उनको क्रोध हो गया। भावे को देखा काला, बोली ये कृष्ण का दूत है। कृष्ण जैसे काला है, वह जैसा काला है, नाम नहीं लिया, वह जैसा काला है, ये भी काला है। हो ना हो वहीं से आ रहा है। ओ हमारे मनाने, मुझे मलाने के लिए आया है। ओ प्रियतम का कोई दोष नहीं तुम्हारे, तुमको बहुत आदर जतन करते हैं, तुमको मनाने के लिए आया हूं। आप उन पर क्रोध न करें। एकदम क्रोध से लाल हो गई और कहने लगी। इसी को श्रीमद् भागवत के 10 श्लोकों में जल्प प्रजल्प सुजल्प अभिजल्प अभिजल्प अनुजल्प इत्यादि 10 भागों में इसका वर्णन किया है। उज्जवल नंदिनी में इनके लक्षण सब दिए गए हैं। तो राधा जी कह रही हैं, ओ तुम मधुबन से आया है, जहां पर मधु होती है शराब, और उसका मालिक जो है मधुपति, वो काला इसका, इससे आज शराब की दुकान को, मद्य की दुकान को चलाता है। ओ वहीं से तुम मधु पी करके मद्यपान करके यहाँ आया है हमें मनाने। तो वो मानो भन भन कर रहा है। उसको सुन करके कहती है राधा जी, ओ हमको मनाने आया। अरे मूर्ख, तुम मद पी करके, मद्यपान करके अपवित्र है, हमारे पैरों को न छू, यहां से निकल जा। काला, काले जितने होते हैं कपटी होते हैं, तू भी उस कपटी से कपट सीख करके मुझे मनाने आया है। जानता है कि मनाना कैसे होता है? तुम नहीं जानते। अरे ये तो बता, तुम्हारे ये जो गुंफे हैं, इनमें कुमकुम कहां से लगा? निश्चित कृष्ण ने किसी राजकुमारी का आलिंगन किया होगा और उसके वस्त्रक्षल का कुमकुम कृष्ण के मालाओं में लग गया होगा। तुम वहीं से लेकर के कुमकुम और तुम्हारी गुंफे पीली हो गई है। जल्दी से हटो, मत छू हमारा पैर। कहता है स्वामिनी जी, ये तो हमारा स्वाभाविक है ने? ये पीली हमारे मुख्य जन्म से ही है, हमने कुमकुम टुमकुम से कोई संबंध नहीं है। दूर हो जा, मैं जानता हूं। जानते हो तुम किसके दूत हो? वो कहीं न कहीं जादुओं की स्त्रियों से प्रेम कर रहा होगा और उसके पति जान जाएंगे तो जानते हो क्या होगा, कैसी उसकी दुर्गति होगी। तुम भी उसी के दूत हो ना, जाओ जाओ यहां से जाओ। फिर वो भन भन करता रहा तो फिर वो कहती हैं, हो तुम मुझे मनाने के लिए आए। एक बार उसने अपने अधरों का मधु हमें पान करा दिया और हमें पागल कर दिया, जैसे तुम हो ना, भौरों से पुष्पों से मधु लेकर और फिर उस मधु पुष्प पर उस फूल पर नहीं जाता, छोड़ देता है। ऐसे वो भी काला हम लोगों से कितना प्यार करता था और हमें छोड़ करके अब वहां के कुब्जा से बड़ा प्रेम करने लगा और दूसरों से, और भी क्रोधित हो गई। यहां मत रहो, जाओ, यहां तुमको मनमाना इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, वहां चली जाओ, जाओ जाओ मथुरा में जाओ, उन जादव पत्नियों के पास में जाओ जिसको जिसकी इच्छा तुमने पूर्ण कर दी है, वो तुमको तुम्हारी झोली को भर देंगी। हम तो कृष्ण के मारे कृष्ण के लिए ही घर से निकल गई, अब एक चना भी देने में समर्थ नहीं है, तुम जाओ। फिर वो भन भन करता रहा, फिर बोली, मानो भ्रम कर रहे, लक्ष्मी जी जिनके चरणों में रहती हैं, भला वो कहीं ऐसा हो सकता है? नहीं, वो तो बहुत ही सीधा साधा और बहुत अच्छा है। नहीं, वो भोली, हम लोग भोली भाली हैं, और वो भी हमसे भी भोली भाली है। वो यदि कृष्ण की जानती जब किसी स्त्री से प्रेम नहीं करता है, प्रेम करके छोड़ देता है, तो वो भी इनके चरण की सेवा नहीं करती। अरे और क्या बतलाऊं, एक काला था, वो काला अपने माता पिता के आदेश से वन में गया और ऐसा स्त्री कामी कि एक दूसरे स्त्री कामी सुग्रीव से मित्रता कर ली और बोला कि हम तुम्हारी स्त्री को ला देंगे, तुम हमारी स्त्री को लाने में मदद करना, और इसी के लिए बाली जो बंदर है जिसका मांस भी नहीं खाते उसको उसने छिप करके मारा। बाली ने क्या दोष किया? और वही स्त्री कामी स्त्री को साथ में लेकर के वन में गया, सूर्पनखा उसके रूप को देख करके मोहित हो गई तो उसका नाक कान काट लिया। एक काला, और एक काला और था जो था तो लंबा चौड़ा किंतु बामन बन करके गया, बलि महाराज जी को छल करके तीन पैगों से ही सारी पृथ्वी को मार नाप लिया और उसको नाक फांस से बांध करके गिरा दिया। वो तो प्रहलाद जी और ब्रह्मा जी की कृपा से फिर उनको छोड़ा। तो कालो लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, जाओ जाओ, मनाने के लिए आए हो तुम हमें, क्या कहते हो मथुरा जाने के लिए? मथुरा में हम कैसे जा सकती हैं? अरे वो तो सब समय उनको लेकर के बैठा है और वो नहीं आए तो लक्ष्मी जी को अपने हस्तक्षल पर सब समय धारण करता है, हम वहां जाकर के संतों के साथ में उनके साथ में कैसे रह सकती हैं? फिर बोले, ओहो तुम वहां से लौट करके आए हो गोकुल से, वृंदावन से, क्या कृष्ण अपने सखाओं को, अपनी मैया को, गायों को, बछड़ों को स्मरण करते हैं? हाय, कभी भी किसी भी प्रसंग से हमारा स्मरण करते हैं कि ये अच्छी तरह से फूल नहीं गूंथ सकती, माला नहीं बना सकती, या बहुत अच्छी तरह से करती है, तुम लोग नहीं कर सकते, प्रसंग में कहते हैं ये कह करके, हा नाथ रमण क्वासी क्वासी महाभूज कृपया दासते
सखे दर्श सन्निधि।
हा नाथ, हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। उद्धव जी देख करके दंग रह गए उनका प्रेम, ऐसा प्रेम तो हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। वंदना करने लगे, आसाम हो चरण रेम विशाम, हे गोपियों तुम्हारा ही जीवन धन्य है, तुम्हारे लिए पृथ्वी धन्य है, ब्रज भी तुम्हारे लिए धन्य है, मैं तुम्हारे चरणों की धूलि को ग्रहण करने के लिए वृंदावन में कहीं गुल्म लता घास बनना चाहता हूँ, जो गोपिया विचार के समय में जाए उनकी चरणों की धूलि मिल जाए। किंतु नहीं हुआ। बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, मैं नंद के ब्रज की गोपियों की चरणों की एक धूलि की वंदना करता हूँ, जिसके विरह के गान से सारा विश्व ब्रह्मांड उद्धार पा सकता है। ये कह करके उद्धव जी एकदम तन्मय होकर के गोपियों की प्रशंसा, तो ये उद्धव जी भी यहाँ पर के घास नहीं बन सके, ऐसी गोपियों की महिमा है। गोपियां भक्त नहीं है कृष्ण की, अपनी प्यारी गोपियां हैं, प्रिया प्रियतमा है, राधा जी की काय विवाह है और राधिका जी स्वयं उनकी लाडली शक्ति है, इनकी महिमा अपरंपार है। संक्षेप में आप लोगों को बहुत संक्षेप में सुनाया, अब यहीं पर आज की कथा का हम विश्राम देते हैं। अभी आरती होगी, आरती होकर के भागवत की पूजा होगी और प्रसाद लेकर के आप लोग अपने इट विल टेक सो मच टाइम एडवांटेज टू फिनिश वेरी सॉन्ग
Entirely
brief.
After doing this, he saw some other gopis, especially one gopi lying underneath one tree. She was in a state of extreme separation, and her friends had taken the petals of a lotus and made one bed out of it. Upon her body diet, applied sandalwood.
Oh.
But the fire from her body was so intense that sandalwood paste was burning up.
Adiksha. Oh, very good.
Her friends were trying to understand if she is alive or not. Therefore, they were taking some cloth, some thread, and putting on her nose. They could see some breath is coming. In this state of extreme separation, one blind bee came to near. Came to Srimati Radhika's feet at the same time Uddhav approached her. That bee, like being, Radhika thought to be a messenger of Krishna. Therefore, Radhika could understand Krishna could not stay even one second without a lady or without any gopis. Therefore, seeing that bee as a messenger of Krishna, she began to abuse that bee. Oh, that black one, she is not saying the name of Krishna. Therefore, she began to abuse the bee, and the bee began answering by humming, "Oh, so many, your Krishna has no fault, yet so much respect for you." Hearing the buzzing of the bee, Radhika became angry and manifested her anger in speaking 10 verses. That is called Ramayana. Srila Prabhupada Swami has explained all these 10 verses, and he is equal to Ramayana as the 10 different ecstatic moods of Radharani. Oh, Madhupati, Madhupati means Krishna. Because Krishna comes from Madhuvan, Madhuravan. Therefore, Krishna is the Lord of Madhuvan, or Madhura. Madhu also means alcohol. Therefore, she said, I know you come from that Madhupati, that person who opened the big wine shop in Mathura. Krishna is drinking the money of the gopis, therefore he became intoxicated. Therefore you are also like that. Somebody drinks alcohol is impure, therefore Radhika said, you have come here in an impure position. Just think you have come to pacify me, but on your mustache there is some yellow color. I know from where that came. Krishna is embracing the wife of the Jagannath there in Mathura. And these makeup on their bodies has come on Krishna's garland. You have grown on that garland and their makeup has come on your mustache. Therefore you are dirty and shameless and impure. You don't know how to pacify anyone. Therefore, to be with answering, oh Radhika, is it not true? My breath, my mustache is yellow. Is it not? I have no eyes for any makeup or anything. And Radharani said, I know you. You are the same nature as your master. And when the others know that Krishna is embracing their wives, they will become very angry. There will be many problems there for Krishna. If you come to pacify me, but I am not being pacified by you. Oh, B, don't you know one time we tasted the nectar of the lips of Krishna? And he made us mad, but he never came back again. Just as a bee goes from one flower to another flower, taking all the nectar of the flower, he never returns again to that flower. In the same way, Krishna took everything from us. Then he went to Mathura and made a relationship with a poor woman named Kuja. Just like a musician, when he sings, he's hoping to get some donation from the audience. And Radharani said, you are very foolish to come here singing for some donation. You should go back there to Mathura, and the wives of the others will give you so much. We cannot even give you one chippy. We left everything for Krishna.
Very detailed.
Then the bee may say, but this is not true.
Very detailed you are.
That bee may say, but Lakshmi, she is always on the chest of Krishna. Then the gopis may say, we are not so foolish like Lakshmi as to believe his words. Therefore, Radhika said, this is not just the fault of that black, it's the fault of all blacks. There was another black one, not saying his name, but this is Ram. He was so nasty. He took sannyas. But what type of sannyas? He took sannyas and went to the palace with his wife. They were all blacks and nasty like that. And that black, he was very nasty when his wife was stolen, so he made friends with another nasty person, called Sugri. His wife was also stolen. Just like one nasty person makes relations with another nasty person. And how cool, Supranika saw his beauty and was attracted. Ram could have said, I won't marry you, but Ram had her nose and ears cut off. Very nice person. And there was another black. His name was Bhavan. He cheated his own devotee because even though he's very big, he came in a very small form and stole everything from his own devotee. Therefore, Radhika said, we have no relation with any black person.